हाँ बिल्कुल, मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूँ कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग है, और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले और बाद में अगर देखेंगे तो ये बड़ा डिस्टिंक्टली दिखता है कि किस तरह से डेवलपमेंट ग्रोथ में उन मापदंडों को अनदेखा किया जो हो सकता है कि ठीक से किए जा सकते थे, और वो अपनी वेदर क्लाइमेट और जो इसकी संरचना है उसमें इफेक्टिवली रहते। ग्रीन बिल्डिंग की लोग बात करते हैं, कॉन्क्रिटाइजेशन, अर्बनाइजेशन ने बहुत सारे कारणों से, अर्बनाइजेशन से ये सब चीजें एक मिसोस्केल लेवल पे जो है साथ में टेम्परेचर बढ़े हैं और ये काफी दिख रहे हैं। तो इंटरवेंशन जो हुए हैं बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, पॉपुलेशन माइग्रेशन, फूड माइग्रेशन, सिक्योरिटी माइग्रेशन, इन सब पॉपुलेशन माइग्रेशन डिपेंडेंट इश्यूज को लेके ये अफेक्ट रीजनल स्केल में तो एकदम डिस्टिंक्टली दिखते ही हैं। ग्लोबल स्केल में भी इसकी सिग्नेचर दिखने शुरू हो गए हैं, जो आप फ्लड, अगर पर्टिकुलरली आप फ्लड इवेंट्स को देखेंगे पिछले 10 साल में ग्लोबली, तो आपको ऐसी ऐसी जगहों में ऐसी ऐसे रिवर्स में फ्लड रिपोर्ट हुए हैं जो कि बड़े अनयूजुअल थे, जिनकी रिकरेंस पीरियड ऑफ फ्लडिंग वॉज क्वाइट अनयूजुअल, जो होता नहीं है। तो वो ज्यादा है, हाँ ये ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा कैप्चर हो रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया जो आप बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में है, एक सदर्न हेमिस्फीयर में, बट वहां भी ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण क्लाइमेट सिस्टम, वेदर सिस्टम, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसके मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड, इन सब में वो एडेड एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग के कारण जो एटमोसफियर की जो रेडिएटिव फोर्सिंग है उसमें फर्क पड़ा है, रेडिएटिव फोर्सिंग में फर्क पड़ा है। रिसर्च अभी की जा रही है, और भी रिसर्च चल रही है, लोग सन स्पॉट, सोलर फ्लेयर की बात करते हैं, कोई स्ट्रेटोस्फेरिक फोर्सिंग की बात करता है, ट्रोपोस्फेरिक रीजन में ये सब चीजें जो है इफेक्ट कर रही हैं।
जी,
जी
ये बताइए डॉक्टर डिमरी कि क्या आपको लगता है कि इतनी जो हमें वैज्ञानिक स्तर पर हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, क्या आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर पर्याप्त रूप से चीजें की जा रही हैं पर्यावरण को संभालने के लिए?
वैश्विक स्तर में इस पर बहस तो बहुत हो रही है। आप अगर देखेंगे रियो हुआ, फिर अभी लेटेस्ट पेरिस हुआ, उसमें बिल्कुल ये चीजें की जा रही हैं, और ये क्लाइमेट को लेके राष्ट्रीय स्तर पे भी जो गाइडलाइन बन रही हैं इस वैश्विक बहस के बाद, वो राष्ट्रीय स्तर पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की बातें हो रही हैं कि जो आपकी मोटर पॉल्यूशन है उसकी गाइडलाइन तय हो रही है, और जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उसकी गाइडलाइन तय हो रही है, क्रॉप में जो क्रॉप बर्निंग का इशू बहुत इम्पोर्टेंट है साउथ एशियन रीजन, उस पर ये सब गाइडलाइंस बात तय हो रही है कि उस गाइडलाइन और उस बात को कैसे लेके रिस्ट्रिक्ट किया जाए और उस पर क्या क्या पाबंदियां लगाई जाए और उनसे एसोसिएटेड लोगों को किस तरह से मदद दी जाए। तो ये सब बातें वैश्विक स्तर पर भी हो रही हैं और रीजनल राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही हैं। समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि मापदंड जो पैमाना है वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे वो डेवलपमेंट के नाम पे थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो वहां पे जो राष्ट्रीय स्तर की गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा स्तर पे इसको लेके आ सकते हैं। जो चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता सही हो, वो किसी दूसरे नेशन के लिए उस स्केल पे सही नहीं हो। तो जब जो वैश्विक स्तर की बहस है वो जब राष्ट्रीय स्तर पे क्लाइमेट के मुद्दे को लेके आती है तो उसके रेमिफिकेशन एंड मैनिफेस्टेशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, वो एक से नहीं रहते डेवलपमेंट के इशू को लेकर। और उनका इम्प्लीमेंटेशन जब फाइनली होता है, लोग कहते हैं स्टेक होल्डर इम्प्लीमेंटेशन, वल्नरेबिलिटी एडेप्टेशन की जब स्तर पर आ जाती है तो वो थोड़ा सा वीक हो जाती है, उस तरह से नहीं सामंजस्य स्थापित हो पाता जिस तरह से कि ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होगा। हाँ, जागरूकता हर जगह बढ़ी है, पॉपुलेशन में जागरूकता बढ़ी है, एक आम आदमी में, नागरिक में इस चीज को लेकर जागरूकता बढ़ी है कि कैसे हम कम से कम पॉल्यूशन जो है ऐड कर पाए। तो वो वैश्विक स्तर की बहस भी धीरे धीरे करके राष्ट्रीय स्तर से लेके नीचे एक पॉपुलेशन इंडिविजुअल कंट्री में इफेक्ट उसका दिखता है, बातचीत में दिखता है।
जी,
जी
एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर डिमरी कि हम जिस गति से चल रहे हैं अगर उसी गति से
जी
चलते रहे तो इसके किस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगले 10, 20, 50 सालों में?
डिफरेंटली सिग्नेचर दिखते हैं, आपको दिखता है कि आने वाले समय में ज्यादा वार्मिंग होने जा रही है। अब इस वार्मिंग को केवल वार्मिंग तक सीमित मत कीजिए, इसको अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेट करेंगे, एनिमल प्लांट लाइफ से रिलेट करेंगे, स्पीसीज मूवमेंट माइग्रेशन से रिलेट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि एनिमल माइग्रेशन होगा, यू नॉट फॉरगेट अबाउट एनिमल माइग्रेशन, द प्लांट ऑल्सो माइग्रेट टू द रिजिलियंट क्लाइमेट पर्टिकुलरली फॉर ए स्पेसिफिक प्लांट. तो ये सब चीजें आप अगर इसको इम्पैक्ट के तौर पर अगर देखेंगे, वाटर, जैसे वाटर की बात कह रहे हैं, वाटर इज गोइंग टू बी बिगेस्ट इशू नाउ, क्योंकि आने वाले समय में 30 साल में पानी विल ड्राइड अप, रेनफॉल विल गेट डेफिसिट, एंड द वाटर विच इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम वेयर यू विल ब्रिंग दैट वाटर. सो वाटर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ वार्मिंग सिनेरियो. हम लोगों ने भी अपने इंडिया में एटलीस्ट इस चीज को देखा है कि पानी अब बोतल में आने लग गया, पहले हम लोग नल में पीते थे जब छोटे थे. तो ये वैश्विक स्तर पे ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है, और उसमें ये जो इम्पैक्ट की बात लोग कर रहे हैं इसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता अभी आ गई है, क्योंकि आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में अफेक्ट होगा, आपकी रिवर्स विल ड्राई अप, आपकी डैम्स में इश्यूज आएंगे, पीने के पानी में इशू आएंगे. तो ये चीजें जो है इम्पैक्ट के तौर में अगर वार्मिंग हो जाती है तो उसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है.